तारा ने सिर हिलाते हुए कहा, कभी नहीं आते। फिर पता है क्या हुआ, अयांश ने मुझे संभाला। मेरी जिंदगी की नई शुरुआत हुई। जयपुर वाली तारा अलग थी, पर मुंबई वाली तारा उससे बहुत अलग। रहने को मुझे आलीशान घर दिया, शौक पूरे करने को पैसा। अयांश बोला, मुझे तुम बस जियो, मरना मत। मैंने कहा, ठीक है, कामकाज कुछ करना नहीं, मौज ही करनी है, कर लूंगी। और मैं फिर अयांश मेहरा का पैसा उड़ाने लगी। मैंने सोचा, जिंदान के पास इतना पैसा है, उम्र भर भी मैं उड़ाती रही तो भी खर्च नहीं होगा। कितना कमाता है ये, काम करता है इतना। मैं ना भी करूं कुछ काम तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अयांश ने भी कभी नहीं कहा कुछ काम करो। हर जरूरत, हर ख्वाहिश पूरी की जिंदान ने मेरी, कि अच्छी ना लगने वाली जिंदगी भी अच्छी लगने लगी। मैंने सोच लिया, तारा तू दिल खोल कर जी, बस कभी कभार अयांश का गुस्सा डांट ही तो झेलना है, नो प्रॉब्लम तारा। मैं खुश रहने लगी। अयांश को और क्या चाहिए था, मैं संभल गई थी। साल भर ही हुआ था मुझे कि अयांश मेरी जिंदगी में माई जैसी आई भी ले आया। ज्यादातर घर से बाहर रहने वाली ताला घर रहने लगी, घर घर लगने लगा, घर का खाना मुझे मिलने लगा, प्यार भी मिलता और देर से घर आने पर डांट फटकार भी। मेरे पास आई जो थी, अब जो मेरी चिंता करती थी, मेरी माई जैसी। अयांश ने आई की जिम्मेदारी इनका ख्याल रखना कहा था मुझे, पर सच तो ये है, मैंने नहीं, आई ने मेरा ख्याल रखा है। मैंने भी आई की याददाश्त वापस लाने के लिए बहुत कुछ किया, पर आज पता चला वो नाटक था। आई का बोला झूठ झूठ नहीं था, मजबूरी थी। कहते तारा ने, अयांश ने उसकी कैसे दूसरी बार इज्जत बचाई वो भी सबको बता डाला, और सब बताकर अयांश के सामने आ खड़ी हुई। ये इंसानियत है ना जिंदान, तुम्हारी काबिले तारीफ है, सैल्यूट करते हुए। तुम इंसान नहीं हो, भगवान हो, और ये तारा अपने इस भगवान को बहुत मानती है। ऊपर की ओर देखते हुए, उस भगवान को भले ना पूजूं, पर ये तारा तुमको पूजती है। कहते तारा अयांश के पैर छूने को हुई कि उसने उसे रोक दिया और उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, भाई हूं मैं, बड़ा भाई तुम्हारा। वैसे तो तुम मेरी बहन बनने लायक नहीं हो, पर जब अयांश मेहरा की बहन, एटीट्यूड वाले लहजे में, बन ही गई हो तो ठीक से रहना तुम, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुन तारा की आंखें नम और होठों पर मुस्कुराहट आ गई, बाकी सब भी मुस्कुरा उठे। तारा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अयांश ने आज बोलकर उसे बहन होने का हक दे दिया था। खून के रिश्ते वाले तो नहीं, पर जैसा एक भाई बहन का रिश्ता होता है, अयांश तारा के बीच वो रिश्ता आज सब देख पा रहे थे, और सब खुश भी थे दोनों के लिए। तारा अयांश के तो नहीं, पर पास खड़ी आरवी के गले लग गई। आरवी तारा का प्यार से सिर सहलाते हुए बोली, तारा मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, गलत इंसान के जिंदगी में आने से जिंदगी खराब हो जाती है, वहीं सही इंसान, अयांश की ओर देखते हुए, के आने से जिंदगी सवर जाती है, मुस्कुराते हुए जिंदगी जन्नत बन जाती है। ये सुन बाकी सभी नहीं, अयांश भी मुस्कुरा दिया। इतना ही नहीं, वो ये भी समझ गया था कि आरवी ने गलत इंसान किसको लेकर कहा है और सही इंसान किसे। उसने उसी पल अपना हाथ आरवी की बांह पर अपना रख दिया। ये देख वो पलकें झपका देती है और उसे इशारों इशारों में बतला देती है, वो ठीक है। थोड़ी देर बाद सब हॉल में मौजूद थे। सोनाक्षी जी दिनकर जी के पास बैठी थी। राधे सबको चाय पानी दे रहा था। वहीं सबसे थोड़ी दूरी पर अयांश आरवी खड़े थे। अयांश को सोचता देख आरवी उसकी बांह पर हाथ रखते बोली, आप क्या सोच रहे हैं। अयांश कुछ कहता कि सोनाक्षी जी ने उसे आवाज दे दी, अयांश, और दोनों उनकी ओर बढ़ गए। सोनाक्षी जी चाय का कप टेबल पर छोड़ अयांश के पास आईं। अयांश, अपने डैड के बारे में पता लगाओ जल्द से जल्द, पता नहीं कहाँ, मैं तो सब ट्राई करके देख चुकी हूँ, बड़े से बड़ा डॉक्टर भी उसे नहीं जानता है। डॉक्टर अनिकेत मेहरा के बारे में किसी को कोई खबर नहीं है, ना इंटरनेट पर कुछ है और ना ही लोगों को पता है। प्लीज तुम कुछ करो, आई नो तुम पता कर सकते हो और उसे यहाँ लेकर भी आ सकते हो, लाओ के ना तुम अनिकेत को घर। इस पर अयांश कुछ भी कहता, शांति जी बोल पड़ी, अयांश अपने डैड का पता लगा भी लेगा तो आपको क्या लगता है, अयांश उनको घर ला पाएगा, वो घर आएंगे नहीं आएंगे। ये सुन सबके माथे पर हैरानी के बल पड़ गए। आरवी अयांश की ओर देख शांति जी की ओर बढ़ी, दादी माँ आप ऐसा क्यों कह रहे हो, अनिकेत मेहरा मिस्टर मेहरा के डैड हैं, ये उन्हें घर लाएंगे तो क्यों ना आएंगे, जरूर आएंगे, वो भी खुशी खुशी। शांति जी फिर बोली, नहीं आएगा, खुश तो होगा पर चाह कर भी नहीं आ पाएगा। सही कहा ना दिनकर जी, आपका बेटा घर नहीं आएगा ना। ये सुनते ही सबकी नजरें दिनकर जी पर चली गईं, जो शांति जी को देख रहे थे। बताइए दिनकर जी, आपने अपने बेटे को कसम दी है इस घर में ना आने की, बताइए आपने उसे बोला है अयांश आरवी की परछाई से भी दूर रहने को, बोलिए बताइए सबको, आपने अनिकेत को फिर से जो सजा दी है उस बारे में। शांति जी ने जैसे ही ये कहा अयांश बोल पड़ा, फिर से सजा। आरवी भी बोली, दादी माँ आप दादू से ये क्या बोल रहे हो और आपको कैसे पता, एक मिनट, क्या आप जानते हो मिस्टर मेहरा के डैड को। शांति जी, मैं ही नहीं आप भी जानती हो बेटा, तुम्हें पता है अनिकेत मेहरा कौन है, अनिकेत मेहरा कोई और नहीं कपिल ही अनिकेत है, दिनकर जी का बेटा, अयांश का पिता। आरवी हैरान होते हुए, क्या कपिल अंकल, अभी भी बोल पड़ा, डॉक्टर कपिल डॉक्टर अनिकेत मेहरा हैं दादी माँ। शांति जी, हाँ बेटा, कि विनीत भी बोल पड़ा, ये तो वही है ना अभिनव, जो दी वर्तिका की ओर देखते हुए यहाँ आए थे, अभी ने हाँ में सिर हिलाया। शांति जी दिनकर जी की ओर देख फिर से बोली, इत्तफाक कहो या फिर किस्मत, वो फिर लौटा था अपने घर पर। उसका घर उसके अपने उसके नहीं है, उसे फिर से कहा गया और कभी वापस न आने का एक बार फिर फैसला सुना दिया गया। दिनकर जी ने जब जाना, डॉक्टर कपिल ही अनिकेत हैं, उनका बेटा है और आरवी से उनका रिश्ता है। डर गए कि कहीं उसके चलते अयांश की जिंदगी से आरवी दूर ना हो जाए। पहले इन्होंने अपने पोते के लिए अपने बेटे से मुंह मोड़ा था, एक बार फिर अपने पोते की खुशी के लिए इन्होंने उससे मुंह मोड़ लिया। वो आया था पर ठीक से मिले भी नहीं दिनकर जी अनिकेत से। एक डर जो हावी था इन पर, कहीं अयांश की हंसती खिलती जिंदगी जो अभी अभी आरवी के आने से शुरू हुई थी, जिस पोते को खुलकर मुस्कुराते नहीं देखा था सालों से, उसको अब खुश देखकर नहीं चाहते थे अयांश पहले की तरह वापस हो। इनके इस घर, मेहरा सदन की ओर इशारा करते हुए, खुशियां वापस चली जाएं। इन्हें लगा जैसे पहले इनका हंसता खेलता परिवार उजड़ गया, वैसे अब भी हो जाएगा। आरवी का अयांश से खास रिश्ता है, दोनों पति पत्नी हैं। जब अयांश को पता चलेगा कि डॉक्टर कपिल ही अनिकेत हैं और उसका आरवी से रिश्ता है, अयांश जो अनिकेत से नफरत करता है, पसंद नहीं करता है, वहीं आरवी डॉक्टर कपिल को बहुत मानती है, तो डरने लगे उसके चलते इनके रिश्ते पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़ जाए, अनिकेत अयांश आरवी के बीच ना आ जाए। तो अनिकेत को इन्होंने वापस जाने को बोल दिया। वापस जाने को ही नहीं, अयांश से भी और आरवी से भी दूर रहने को कह दिया। आरवी से भी ना मिले और फिर वही हुआ जो ठीक नहीं हुआ। अनिकेत ने जैसे पहले खुद को अयांश से दूर किया, वैसे ही आरवी से खुद को दूर कर लिया, जो उसकी जिंदगी में एकमात्र खुशी की वजह थी, जिसे वो अपने बेटे जितना बेटे के हिस्से का भी प्यार देता था। दिनकर जी की बात फिर से मानकर उसने अपनी थोड़ी सी रोशन जिंदगी को फिर से अंधेरे में डाल लिया। तकलीफ हुई उसको, पर उसने उफ तक नहीं की। अपने बच्चों की खुशी भले के लिए एक बार फिर उसे वो करना पड़ा जो आसान नहीं था।
कहते शांति जी ने वो सब बता डाला जब अनिकेत जी वर्तिका को देखने मेहरा सदन आए थे। दिनकर जी ने अनिकेत जी से जो कहा था, अनिकेत जी ने शांति जी को सब बताया था, वो भी उनके पूछने पर, क्योंकि उनकी जिंदगी में शांति जी थी जिनसे वो कभी कभी मन की बातें या दुख दर्द कह देते थे, इसलिए वो सब जानती थी। आरवी से बात न करने की भी वजह जब शांति जी ने अनिकेत जी से पूछी, तो उन्हें उनको सच बताना पड़ा, तभी वो जान पाई दिनकर जी ने उसको क्या कहा है। शांति जी को वो ठीक नहीं लगा, पर वो क्या ही कर सकती थी। अनिकेत जी ने भी उस वक्त रोक दिया था उन्हें, पर आज वो चुप न रह सकी। वो भी तो चाहती थी उनकी जिंदगी में सब ठीक हो। क्रमशः